दिन भर शुक्रवार 28 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फिर हुई गोलीबारी, भारत के 3 नागरिकों की मौत। भारत में शुरू हुआ 1965 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने का जश्न, पूर्व सैनिकों ने किया बहिष्कार। बिहार में नीतीश कुमार ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, 275 लाख करोड़ रुपए की विकास योजना। विवेचना में आज चर्चा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और उनके खेल की।
वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे, ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे, वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर से खबर है कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ देर बाद पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने भी कहा कि सियालकोट सेक्टर की वर्किंग बाउंड्री पर भारत की तरफ से हुई फायरिंग में 6 आम नागरिकों की मौत हो गई है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जम्मू के आरएसपुरा के अब्दुलिया और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने भारी गोलीबारी की। उधर पाकिस्तानी सेना ने करीब 46 लोगों के घायल होने की बात भी कही है। पश्चिमी लीबिया में मछुआरा नावें अप्रवासियों के 2 जहाज डूब जाने के बाद अब भी समुद्र में शवों की तलाश कर रही हैं। दर्जनों लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों के डूब जाने की आशंका है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि यूरोप जाने के लिए करीब 500 अप्रवासी इन जहाजों पर सवार थे। समझा जा रहा है कि पीड़ितों में सीरिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के नागरिक शामिल थे। उधर इटली में पुलिस ने 10 संदिग्ध मानव तस्करों को हिरासत में लिया है। इस साल अब तक 2000 से भी ज्यादा अप्रवासी छोटे जहाजों में लीबिया से इटली जाने की कोशिश करने में मारे जा चुके हैं। हंगरी की पुलिस का कहना है कि उन्होंने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में एक लॉरी के फ्रिज में पाए गए 71 अप्रवासियों के शवों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रिया के अधिकारियों के अनुसार ये अप्रवासी संभवतः सीरिया से थे और दम घुटने से इनकी मौत हो गई। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की प्रवक्ता मेलिसा फ्लेमिंग ने कहा कि ये त्रासदी अप्रवासियों की दुर्दशा और मानव तस्करों के लालच की जीती जागती मिसाल है।
This, we believe, underscores the ruthlessness of people smugglers.
हमारा मानना है कि इस त्रासदी से उन तस्करों की निर्दयता का एहसास होता है जिन्होंने अपना गैर कानूनी कारोबार भूमध्य सागर से लेकर यूरोप के हाईवे तक फैला लिया है। उन्हें इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, वे सिर्फ मुनाफे के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे उन लोगों की नाउम्मीदी का भी पता चलता है जो यूरोप में नई जिंदगी और हिफाजत पाने के लिए अपनी जिंदगी को इन तस्करों के हाथों में सौंप देते हैं। ये थे मेलिसा फ्लेमिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की एक अदालत ने पूर्वी शहर हाइडेनाउ में सार्वजनिक तौर पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध के फैसले को उलट दिया है। पिछले हफ्ते यहां दक्षिणपंथी लोगों ने एक शरणार्थी शिविर के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इस सप्ताहांत में भी यहां और हिंसा होने की आशंका है। जर्मनी के गृहमंत्री ने कहा कि हाइडेनाउ में स्थानीय पुलिस की मदद के लिए पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जाएंगी। चांसलर मर्केल ने जब बुधवार को इस शिविर का दौरा किया था तो दक्षिणपंथी लोगों ने उनके खिलाफ शोर शराबा भी किया था। ब्राजील के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चल रही है। आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था साल के दूसरे तिमाही में 1.9% सिकुड़ गई है। आशंका है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था 2009 के बाद पहली बार गिरावट के दौर से गुजरेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप हमें bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं निखिल रंजन। आज 28 अगस्त है और भारत में आज से 1965 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो ये हाजी पीर पर भारत के कब्जे का दिन है, जो आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू होने के पहले की झड़पों में ही हो गया था। युद्ध की औपचारिक शुरुआत 1 सितंबर से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान इसे 6 सितंबर से शुरू मानता है। उस जंग को तो 50 साल बीत गए, लेकिन भारत पाकिस्तान की झड़पें बीते कुछ दिनों से अक्सर हो रही हैं। आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग और गोलीबारी कल से ही हो रही थी, जो आज सुबह होने के बाद रुकी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई है और इसके साथ ही 14 लोग घायल भी हुए हैं। उधर पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय सेना की फायरिंग में सियालकोट के 6 नागरिक मारे गए हैं। सीमा पर कई महीनों से तनाव है और भारत और पाकिस्तान की सेना जब तब तोपों और बंदूकों का मुंह खोल देती है। ताज़ा घटनाक्रम पर श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
सैनिक अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र जम्मू में सीमा का आरएसपोरा सेक्टर फिर एक बार हिंसा की लपेट में है। अधिकारियों के मुताबिक कल रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय ठिकानों पर फायरिंग की और मार्टर गोले दागे जो अब्दालियां और आर्निया बस्तियों में गिरे। शेलिंग की जद में आकर 3 नागरिक मारे गए और 14 अन्य घायल हैं। घायल नागरिकों में से कुछ को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने गोलाबारी का आंखों देखा हाल बताया।
फायरिंग कोई 1 बजे शुरू हुआ है और हम सामने गोला पड़ा और हम वहाँ बैठे थे, उसके जो पत्नी वो हम कुछ एक मकान में बैठे थे पक्के में इकट्ठे होकर।
जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल ने बताया कि घायल नागरिकों में से 2 की स्थिति गंभीर है। इनका कहना है कि फायरिंग रुक गई है और पलायन की कोई संभावना नहीं है।
पलायन नहीं है क्योंकि ये लोग अपने घरों के चले जाते हैं ना अंदर सेफ्टी में, तो ऐसा पलायन वाला नहीं इशू है। और सुबह से फायरिंग रुकी हुई है, वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह सब वहीं पे हैं, तो वहाँ पे अभी और अभी अभी फायरिंग नहीं चल रही है। अब हमारा यही है कि जो ये जो इंजरी हुई है, कुछ ऑपरेट हो रहे हैं अंदर, तो उनमें से 2 जो है उनकी हालत मतलब थोड़ी सी ज्यादा सीरियस है। 2 इंजर्ड जो है वो क्या सीरियस इंजरी है और बाकी 12 तो सेफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन भी इसी सेक्टर में भारी गोलाबारी हुई थी, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए थे। गौरतलब है पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में भी सीमा के तनाव ग्रस्त रहने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून की अपील के बाद सीमा और एलओसी पर तनाव खत्म करने पर दोनों देश सहमत हो गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का ताजा प्रयास नाकाम हो जाने के बाद सीमा पर तनाव की ताजा लहर फैल गई है। सैनिक अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने पाकिस्तान ने 19 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जबकि इस महीने अभी तक ऐसी 52 घटनाएं घटी हैं जिनमें 3 सैनिकों समेत 4 लोग मारे गए हैं। इस वर्ष अभी तक 245 बार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर इस समझौते का उल्लंघन किया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
1965 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई 17 दिनों तक चली थी और इसमें 3,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध की स्वर्ण जयंती पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं और शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर भी एक कार्यक्रम रखा गया, मगर एक रैंक एक पेंशन की मांग कर रहे 1965 की लड़ाई में शामिल कई पूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जंग के दौरान भारत को कई स्थानों पर एक के बाद एक कामयाबी मिलती चली गई और देश के फौजियों का मनोबल अपने पूरे शबाब पर जा पहुंचा। आज जब दिल्ली के इंडिया गेट पर 1965 की जंग का सरकारी जश्न मनाया जा रहा था, वहीं कुछ ही दूर पर इस जंग के हीरो यानी पूर्व सैनिक अपने आंदोलन के 75वें दिन में मायूसी में डूबे नजर आए। एक पद एक पेंशन की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में कई पूर्व जनरल कर्नल और सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान सेना का डटकर मुकाबला किया था। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनकी बहादुरी की मिसालें आने वाली नस्लों को दी जाती रही हैं, मगर आज इस जमात को लगता है कि उनको मिले बहादुरी के तमगे सरकार के लिए बेमानी हो चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विजयलाल, जिन्होंने इंडिया गेट की बजाय जंतर मंतर पर आंदोलनरत अपने पुराने साथियों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेना बेहतर समझा। BBC के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा,
मैं उसको काबिल नहीं समझता। एज एन सोल्जर, एज ए सोल्जर, एज ए वेटरन, आई डू नॉट, आई कंसीडर बिलो माय डिग्निटी टू गो देयर। वेटरन्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, हु कंट्रीब्यूटेड, हिज सन, देयर अदर्स, एंड आई गोंट डू दिस व्हेन द गवर्नमेंट इज एंटी मी, आई विल नॉट डू।
लेफ्टिनेंट जनरल विजय लाल की तरह ही 1965 की जंग में शामिल कर्नल किरीट जोशी भी थे, जिन्होंने भी सरकारी जश्न में शामिल होने की बजाय आंदोलन में ही हिस्सा लेना बेहतर समझा।
आयरनी इज 3 दिन गुजरात में 9 लोग मर गए है, करोड़ों का नुकसान हो गया। श्री मोदी टीवी पर आ गए कि भाई बंद करो, सच बात है, यहाँ हम 75 दिन से बैठे हैं, यहाँ हम इतनी शांति और डिग्निटी से बैठे हैं,
एक जगह नहीं वाला
नहीं आया। आयरनी इज दिस एंड इट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स।
इनमें सूबेदार प्रगट सिंह भी हैं, जो पिछले 2 दिनों से अपनी पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।
हमें अफसोस इस बात का है कि जो सिपाही तो लेकर जेसीओ तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, सिपाही टू जेसीओ किसी को नहीं बुलाया गया, बुलाया गया है तो सिर्फ ऑफिसर को। लड़ाई में योगदान ही तकरीबन अपना जवान और जेसीओ का होता है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा पूर्व सैनिकों का कहना है कि उन्हें अपने ऊपर और अपनी रेजिमेंट के उन साथियों पर गर्व तो है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी फौज का सामना किया था, मगर उन्हें अफसोस है कि जिन फौजियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की थी, आज उन्हीं की मांगों को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से वन रैंक वन पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे लागू करने में हो रही देरी से पूर्व सैनिकों की नाराजगी बढ़ रही है। आखिर वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में सरकार क्यों हिचक रही है? सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ सकता है? थोड़ी देर पहले ये सवाल मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन से पूछा तो उनका जवाब था,
अभी कहना बोझ क्या है बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पे भारत सरकार ने कोई आंकड़े पब्लिक नहीं किए, मगर इसमें दो तीन तरह के बोझ आएंगे। एक तो ये आएगा कि जैसे अभी लोग बोलते हैं कि 8,000 करोड़, 12, कोई 10,000, कोई 12,000 करोड़ बोलता है, वन टाइम इसका कॉस्ट आएगा आज की तारीख में, मगर जो मेन कॉस्ट इसका जब आएगा कि हर साल जब इसको आप इन्फ्लेशन इंडेक्स करेंगे या हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है तो पे कमीशन आके तनख्वाहें बढ़ा देता है, तो उसका बोझ जो लोग 8,000 करोड़ कह रहे हैं वो 9,000 हो सकता है, 10 हो सकता है। फिर अभी भी ये भी इसमें भी बात अभी ये तय नहीं हुआ है कि जो सैलरी रिविजन जो आज की तारीख में हर 10 साल में होता है, प्रेस में भी ये आया है कि जो वेटरन है जो आर्मी नेवी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हर साल रिवाइज हो, तो अभी कुछ इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि अमाउंट कितना होगा, तो ये भी संभावना है कि और लोग ये चाहेंगे। तो जैसे एक रेलवे यूनियन ने ऑलरेडी कह दिया कि हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए, पुलिस वालों को भी चाहिए, CRPF वगैरह भी आएगा, तो इसका जो बोझ है बहुत ज्यादा हो सकता है और अभी कोई खास आंकड़े नहीं है, मगर ये जरूर है कि इसका बर्डन बहुत हैवी हो सकता है। तो वन रैंक वन पेंशन में तो बहुत ही फर्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो 90% 95% लोग हैं आर्मी एयरफोर्स वगैरह के डिफेंस फोर्सेज के, ये 35 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं।
ठीक है कि उनकी कम सर्विस होती है, लेकिन वो लोग उसके बाद भी कुछ काम तो करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग खाली बैठे रहते हैं, तो ये कितना उचित है इस लिहाज से ये उनकी मांग?
एक्चुअली इसका बेस्ट तरीका होता वो यही होता कि भारत सरकार कोई इंडस्ट्री से बात करती या कुछ अपने प्रोविजन करती कि भाई हमें इन वेटरन्स को नौकरी देनी चाहिए ताकि 35 साल की उम्र के बाद इनको कोई नौकरी मिले, कि चाहे भारत सरकार वन रैंक वन पेंशन एक्सेप्ट करे या ना करे, जो फ्यूचर आर्मी रिक्रूट्स हैं, जो फ्यूचर नेवी रिक्रूट्स हैं, उनके लिए जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है ये आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है ये बिल्कुल अनवायबल है, इस सरकार बैंकरप्ट हो सकती है।
एक ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार इतने सैनिकों और पूर्व सैनिकों का बोझ नहीं उठा सकती है तो फिर क्यों ना वो अपने सैनिकों की संख्या में कमी लाए, इसको कितना उचित मानते हैं आप?
तो ये नहीं है कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी नेवी, इतनी बड़ी एयरफोर्स खड़ी कर रखी है जिसके पैसे भारत सरकार नहीं दे सकती, ये गलत बात है। भारत सरकार जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के पास उस पैसे दे सकती है, ये जो ओआरओपी की जो डिमांड है ये उसके ऊपर एक नई डिमांड आ गई है। ये लिंक करना कि भाई भारत सरकार के पास पैसे नहीं है तो क्यों ना आर्मी या एयरफोर्स कम कर दे।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन बता रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में सरकार क्यों हिचक रही है।
इनको पहले दो गोलियां लगी, फिर दो गोलियां और लगी और वो अटैक आगे बढ़ते गए, उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा,
कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं की घोषणा की है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी पार्टी या गठबंधन का घोषणा पत्र नहीं है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में विकसित बिहार के लिए अपने 7 सूत्र उन्होंने पेश किए, इसमें हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की गई है लेकिन युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दी गई है। नीतीश कुमार के विजन डॉक्यूमेंट पर सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को विकास के नए सपनों की सौगातों का सिलसिला जारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त को बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। वहीं इसके 10 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए 7 सूत्र सामने रखे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें अगर फिर से मौका मिला तो वे अगले 5 सालों में बिहार के विकास के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ खर्च करेंगे। नीतीश ने ऐसी 7 योजनाओं को सामने रखा जिन्हें वे फिर से मुख्यमंत्री बनने पर अगले 5 सालों में लागू करेंगे। इन योजनाओं के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताने के बाद उन्होंने कहा,
और जो हमने ये 7 सूत्र आपको गिनाए, इनको मिशन मोड में लागू किया जाए। मिशन मोड में लागू करेंगे, किया जा सकता है ताकि 5 वर्ष के अंदर जो लक्षित समूह है उनको लाभ मिल जाए। और ये जितनी योजनाएं हमने गिनाई, इन सब को लागू करने के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का व्यय संभावित, और यह किया जा सकता है और किया जाए।
नीतीश ने इस बार योजनाओं में युवाओं और महिलाओं का खास जिक्र किया है। युवाओं के लिए उन्होंने शिक्षा कर्ज में ब्याज पर सब्सिडी और स्वयं सहायता भत्ता देने का वादा किया। साथ ही उनकी ओर से उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड और कॉलेज विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने का भी खाका पेश किया गया। नीतीश ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का भी वादा किया है। साथ ही उन्होंने सूबे के हर घर में बिजली, शौचालय और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की बात भी कही। इसके अलावा नीतीश ने हर गांव तक सड़क पहुंचाने का भी यकीन दिलाया। बिहार के मुख्यमंत्री के अनुसार इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जितने पैसों की जरूरत है उसे जुटाना संभव है।
अगर मौका देंगे तो इस काम को हम कर सकते हैं, ये करने योग्य है और करने की सीमा के अंतर्गत आता है। मैंने बार बार कहा कि हमने संभावित जो संसाधन की आवश्यकता है उसका आकलन कर लिया और ये किया जा सकता है, संतुष्ट हो गए हैं तब हम इस बात को कह रहे हैं। और इतना तो बिहार के लोगों को मालूम है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो उसको करते हैं।
नीतीश के मुताबिक मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जो अनुभव रहे उसके आधार पर उन्होंने ये सूत्र सामने रखे हैं। साथ ही नीतीश ने यह भी साफ किया कि ये उनकी पार्टी या गठबंधन का घोषणा पत्र नहीं है और न ही ये सरकार की घोषणाएं हैं। हालांकि जानकार इसे नीतीश के निजी घोषणा पत्र के रूप में देख रहे हैं। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय मीडिया में जनसंख्या के ताजा आंकड़ों को धार्मिक आधार पर ज्यादा उछाला जा रहा है। क्या इतने महत्वपूर्ण आंकड़ों को मात्र धर्म के चश्मे से देखना सही है? इसी विषय पर है शनिवार 29 अगस्त का इंडिया बोल। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001, या फिर अपने नंबर इस पते पर ईमेल करें bbchindi.indiabowl@gmail.com।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो इंडिया बोल में आप भी सवाल पूछिएगा, लेकिन इस वक्त दिन भर में वक्त है विवेचना का। क्रिकेट में जो स्थान डॉन ब्रेडमैन का है और फुटबॉल में जो स्थान पेले का है, वही स्थान हॉकी में मेजर ध्यानचंद का है। अपने ज़माने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। उनकी 110वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने ज़माने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हों। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बाल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बाल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे, वो बिल्कुल ड्रिबलिंग नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके राइट फुट के सामने बाल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग, किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो उन्होंने बाल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो दो पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बाल जाना है, उनकी स्कोरिंग पार बहुत ही अच्छी थी।
ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था।
कलकत्ता गए खेलने को तो एक पिलियन ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया, उन्होंने उस लड़के का पिलियन का कंधा थपथपाया, सब आ बेटा कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए, तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया।
1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था,
ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था।
2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे,
लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं।
याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है,
जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था।
केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया।
अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आजादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पिशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले, और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से झेलम में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पिशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई।
1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा,
जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए।
जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा,
6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है।
भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया,
72 की बात है, हम प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में, और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी उन्होंने मुझे दिखाई और एक बंडल जो था पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद फादर, योर फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे, लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया।
भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं,
हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है, मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया, लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
मेजर ध्यानचंद पर रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर से खबर है कि आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पश्चिमी लीबिया में मछुआरा नावें अप्रवासियों के 2 जहाज डूब जाने के बाद अब भी समुद्र में शवों की तलाश कर रही हैं। इस हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों के डूब जाने की आशंका है। हंगरी की पुलिस का कहना है कि उन्होंने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में एक फ्रीजर लॉरी में पाए गए 71 अप्रवासियों के शवों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जर्मनी की एक अदालत ने पूर्वी शहर हाइडेनाऊ में सार्वजनिक तौर पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध के फैसले को उलट दिया है। ब्राजील के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चल रही है। आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था साल के दूसरे तिमाही में 1.9% सिकुड़ गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। पूरी टीम के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।